सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् सिद्धमनन्तमणिन्दिय मणुव मम पथसौखमणवज्जम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम पर लिखी गई थी, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी, और जो उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह हम पृष्ठ संख्या 427 पर आए। देखो, अभी यहाँ मिथ्यादृष्टि जीवों के ओघालाप हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने देखा था, अभी यहाँ से आलाप जो चालू हो जाते हैं, तो उसमें हमने देखे थे कि सभी कौन कौन से यहाँ आलाप हो सकते हैं, उसकी बात हमने देखी थी। देखो, अब कहेंगे मिथ्यादृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर। तो मिथ्या दृष्टि जीवों में क्राइटेरिया भी अपने ख्याल में रखना है। गुणस्थान की बात चल रही है अभी। एक मिथ्या तो गुणस्थान है, तो उसमें कौन कौन से जीव होंगे? हाँ, कौन कहेगा अभी? हाँ, प्रेरणा बिना आप कहना। मिथ्या दृष्टि जीव लेने हैं तो मिथ्या दृष्टि जीवों में एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सभी लेने, तो वो मिथ्या दृष्टि पर्याप्त हो गए कि अपर्याप्त हो गए? हाँ, सभी हो गए, तो बताना भी आप। हाँ, एक मिथ्या तो गुणस्थान, जीव समास कितने हो गए? 14। कौन कौन से 14? हाँ, सभी वो पर्याप्त के साथ और अपर्याप्त के साथ, इस तरह से 14 जीव समास। अभी पर्याप्त या गिनाना? हाँ, मिथ्या दृष्टि सभी ना पर्याप्त अपर्याप्त, आपने 14 की 14 बताए। हाँ, तो पर्याप्तियाँ कितनी होगी? हाँ, 6 पर्याप्तियाँ 6 अपर्याप्तियाँ। संगी जीवों के पर्याप्तों के 6 पर्याप्तियाँ और संधि अपर्याप्तों के 6 अपर्याप्तियाँ, बराबर। फिर असंगी से लेकर नीचे द्विंद्रिय तक, उनके 5 पर्याप्तियाँ और 5 अपर्याप्तियाँ, और एक इंद्रियों में हाँ 4 पर्याप्तियाँ और 4 अपर्याप्तियाँ, बराबर है। अब प्राण कितने होंगे? अभी क्रम से गिनाने पड़ेंगे। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है ना, तो 10 और 7। देखो, संगी में गिनाना, पहले संगी के पर्याप्तों के 10 और अपर्याप्तों के 7, असंगी में 9 और 7, चतुरिंद्रिय में 8 और 6, और तीन्द्रियों में 7 5, द्विंद्रियों में 6 और 4, और एकेंद्रियों में 4 होते, बराबर है। अब यहाँ केवली के लेना कि नहीं लेना? क्यों? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, अपना क्राइटेरिया ख्याल में रखना। देखो, तो संज्ञा चारों संज्ञाएं, चारों गतियां हैं, और इंद्रिया में क्या लेना है? एक इंद्रिय जाति को लेकर 5ों, यानी एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय, इसे 5ों ही है। और काय में पृथ्वी काय को आदि लेकर 6 काय। अब योग कौन कहेगा? देखो, कौन सा ये जीव? मिथ्या दृष्टि जीव है, और हमने गति कौन कौन सी ली है? चारों गति ली है, तो अभी योग कौन से हो गए? हाँ, मन के 4, वचन के 4, औदारिक भी हो गए, वैकृत भी हो गए, औदारिक मिश्र भी हो गए, वैकृत मिश्र भी हो गए, और कारमाण भी हो गए। तो कौन से नहीं हो गए? तो आहारक और आहारक मिश्र नहीं हो गए का योग, तो उसके बिना 13 योग हो गए। वेद, हाँ, तीनों वेद, चारों कषाय। ज्ञान में 3 अज्ञान, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है ना, तो 3 अज्ञान। असंयम, दर्शन में चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। विभंग ज्ञान है तो उसके साथ दर्शन नहीं लगाना। अब लेशा में ना, द्रव्य की लेशा 6 और भाव की भी 6। भव्य है कि अभव्य है, पहला गुण स्थान है ना, हाँ, तो भव्य अभव्य दोनों है। मिथ्यात्व क्या है, ये कौन सी मार्गणा चल रही है मिथ्यात्व वाली? हाँ, सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्यात्व वाला भेद है। संगीक और असंगिक, क्योंकि हमने 14 जीव समास लिए थे तो संगी असंगी सब है। आहारक अनाहारक है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, बराबर है ना। तो इस तरह से हमने मिथ्या दृष्टि जीवों के उघाल आप देखे। अभी देखो इसको पढ़ेंगे, ये इसमें से पुस्तक में से 427 पृष्ठ पर देखते हैं। एक मिथ्या तो गुणस्थान, 14 जीव समास, संगी के 6 पर्याप्तियां 6 अपर्याप्तियां, असंगी और विकलत्रयों के 5 पर्याप्तियां 5 अपर्याप्तियां, एकेंद्रियों के 4 पर्याप्तियां 4 अपर्याप्तियां, संगी के 10 प्राण 7 प्राण, असंगी के 9 प्राण 7 प्राण, चतुरिंद्रिय के 8 प्राण 6 प्राण। पर्याप्त अपर्याप्त इसलिए वो जोड़ी जोड़ी में कह रहेगी। देखो, 3 इंद्रिय के 7 प्राण और 5 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण और 4 प्राण, और 1 इंद्रियों के 4 प्राण और 3 प्राण। अब चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, 1 इंद्रिय जाति को आदि लेकर 5 जातियां, पृथ्वी काय को आदि लेकर 6 काय, आहारक द्विक अर्थात आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग के बिना 13 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव की अपेक्षा 6 निश्चाय, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक और असंगिक, आहारक और अनाहारक, साकार ज्ञान उपयोगी और अनाकार दर्शन उपयोगी होते हैं। साकार का अर्थ ज्ञान उपयोगी और अनाकार उपयोगी यानी दर्शन उपयोगी। अब हमने जो ये आलाप लगाए हैं, अभी उसमें से पर्याप्तों के अलग कहेंगे और अपर्याप्तों के अलग कहेंगे। पहले तो अभी हमने मिथ्या दृष्टि में सामान्य देखा था, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को एक साथ देखा था। अभी अकेले पर्याप्तों को देखेंगे, फिर अकेले अपर्याप्तों को देखेंगे। तो कौन कहेगा अभी ये मिथ्या दृष्टि जीवों के पर्याप्त आलाप चलेंगे? हाँ, तेजोबेन आप बताना जरा जोर से। हाँ, गुणस्थान, कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? हाँ, मिथ्या तो गुणस्थान, जीव समास कौन से हो गया? अभी देखो पर्याप्त आलाप चल रहा है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, तो कौन कौन से जीव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं? 1 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय, हाँ सभी। तो उसमें लेना, सभी के पर्याप्त लेना है ना यहाँ पर, तो 7 जीव समास लेने पर्याप्तों के साथ, यानी 1 इंद्रिय से 1 इंद्रियों के सूक्ष्म और बादर पर्याप्त, 2 इंद्रियों के, 3 इंद्रियों के, इस तरह से। तो 7 पर्याप्त ये जीव समास में हम लिखेंगे, 7 पर्याप्त। फिर पर्याप्ति कितनी होगी? हाँ, पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियां, और असंगी में और विकलेंद्रियों में 5 पर्याप्तियां, और 1 इंद्रियों में 4 पर्याप्ति, बराबर। अभी प्राण क्रम से गिनना, संगी के, असंगी के, चतुरिंद्रिय के वगैरह। हाँ, 10 प्राण, 9 प्राण, फिर 8, 7, 6 और 4 संज्ञा, 4 गति, चारों गति, इंद्रियां 5, काय षटकाय। हाँ, योग बताना भी कौन कौन से हो गए पर्याप्त जीव है ना यहाँ। हाँ, मन के 4, वचन के 4 और हाँ मिथ्या दृष्टि है, चारों गतियां ली है, तो औदारिक कायोग और वैक्रिक कायोग भी लेना पर्याप्त है ना। मिश्र को नहीं लेना और कारमान को नहीं लेना। हमने देखा था कि पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर हमने 13 लिए थे, अब उसमें औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान नहीं लिए हैं। यहाँ पर्याप्तों के अकेले लेना है, तो 10 योग हो जाएंगे। वेद कितने? हाँ तीनों। कषाय? 4। हाँ बराबर है। ज्ञान पर्याप्त है? हाँ। कौन से? सु के कु? हाँ तीन कु ज्ञान है, तीन अज्ञान। संयम असंयम बराबर है। दर्शन चक्षु और अचक्षु दो दर्शन है बराबर। लेशा द्रव्य की बताना कितनी है? 6। और भाव की? नहीं भाव की भी 6। ये मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें भाव की भी 6 लेशा है। पर्याप्त जीव है? देखो देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा होती है भाव के। द्रव्य की लेशा तो शरीर का वर्ण है, वो तो सभी प्रकार के हो सकते हैं उसमें, उसमें कोई बात नहीं। वो तो गुणस्थान के अनुसार बदलेगी नहीं, द्रव्य की तो 6 लेशा होगी। पर्याप्त जीवों में 6 लेशाएं पाई जाती है। हाँ भव्य, भव्य के अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है। हाँ भव्य अभव्य दोनों है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व है। और संगीय के असंगी? संगीय असंगी, क्योंकि हमने सभी सातों ही पर्याप्त जीव लिए थे। हाँ आहारक के अनाहारक? आहारक। और उपयोग दोनों साकार और अनाकार। देखो ये 4 नंबर का टेबल है उसमें वो भव्य के बाद सम्यक्त्व के ऊपर वो स के ऊपर बिंदी वो निकाल देना। ऊपर भी 3 नंबर के टेबल में भी वो स के ऊपर बिंदी आई वो भी निकाल देना, वो सम्यक्त्व वाला कॉलम है। संगी वाला कॉलम तो अगला है। हाँ और वो संगी भी वो घी जो है वो दीर्घ चाहिए, दूसरी ही चाहिए। हाँ देखो अभी हम इसमें से पढ़ेंगे। देखो मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीवों के आलाप कहने पर, एक मिथ्या तो गुणस्थान, पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास सभी को लिए ना हमने, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सातों के ही पर्याप्त लिए हैं। संगी की 6 पर्याप्तियां, असंगी और विकल त्रयों के 5 पर्याप्तियां, एक इंद्रियों के 4 पर्याप्तियां। अभी प्राण गिनाएंगे। संगी के 10 प्राण, असंगी के 9 प्राण, चतुर इंद्रिय के 8 प्राण, तीन्द्रिय के 7 प्राण, द्विंद्रिय के 6 प्राण, एकेंद्रिय के 4 प्राण। चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी का आदि 6 का है, आहार द्विक और अपर्याप्त संबंधी 3 योगों के बिना 10 योग। आहार द्विक तो हमने पहले निकाले थे तो मिथ्यात्व योगों को हमने 13 योग देखे थे। अब इसमें से पर्याप्त जीव लेना है तो अपर्याप्त संबंधी जो मिश्र और कारमण है उसको भी निकालना। हाँ तो 10 योग। तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, ये मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व कौन सा क्राइटेरिया? यह मिथ्यात्व में किसको चल रहे हैं, कौन सी प्ररूपणा ये मिथ्यात्व वाली, कौन सी मार्गणा है? हाँ सम्यक तो मार्गणा की बात चल रही है। हाँ संगिक असंगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये जो हमने पर्याप्तों में देखे थे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान और पर्याप्त, अभी अपर्याप्तों पर लगाना है, सभी के अपर्याप्त लगाना है। कौन लगाना चाहता है? हाँ क्या मैं बताऊं? अभी तेजू बेन ने लगाया ना पर्याप्त। हाँ मंजू बेन आप लगाना अपर्याप्त, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त। हाँ अभी गुणस्थान कौन सा चल रहा है? हाँ गुणस्थान मिथ्यात्व 1 बराबर। जीव समास बताना भी, कौन से 7? हाँ अपर्याप्त 7 अपर्याप्त बताना। अभी हमने देखे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय के हमने 2 भेद देखे और पंचेंद्रियों के भी 2 भेद देखे। इस तरह टोटल जो 7 भेद है उसमें से अपर्याप्त 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 सभी के अपर्याप्त लेने, तो 7 अपर्याप्त कहेंगे। पर्याप्ति हाँ संगी के 6, हाँ बराबर 6 अपर्याप्ति, असंगी में और चतुर इंद्रिय तीन्द्रिय द्विंद्रिय में हाँ 5 अपर्याप्ति, और एक इंद्रियों में 4 अपर्याप्ति बराबर। प्राण बताना क्रम से अभी, हाँ 7 7 फिर 6, हाँ 5 भी लेना, 5 4 और 3 बराबर। सभी अपर्याप्तों के हम प्राण गिन रहे हैं। देखो संगी के भी 7 और असंगी के 7, संगी जीवों में 10 प्राण तो हमने देखे थे, 5 इंद्रिय प्राण हाँ, तीन बल प्राण, एक श्वासोश्वास प्राण और एक आयु प्राण। अब उसमें से अपर्याप्तों को गिनने हैं। देखो, एक रूल ख्याल में रखना, अपर्याप्त जीवों में मन बल नहीं होता, वचन बल नहीं होता और श्वासोश्वास नहीं होता। तो संगी के 10 में से 3 गए तो 7 रह गए। अब असंगी जीवों में, पर्याप्त जीवों में हमने वचन मनोबल वहां होता ही नहीं है, तो मनोबल को छोड़ा, 5 इंद्रिय प्राण वहां है, वचन बल है, फिर काय बल है, श्वासोश्वास है, आयु है, तो पर्याप्तों के हमने 9 गिने थे। तो अपर्याप्तों में कितने हो गया अभी? देखो, वचन बल नहीं होगा और श्वासोश्वास नहीं होगा, यानी 9 में से 2 कम हो जाएंगे। तो असंगी के 9 पर्याप्तों के हो तो अपर्याप्तों के 7। हाँ, अभी क्रम से एक एक कम कर दो, एक एक इंद्रिय वाले के। तो 4 इंद्रिय के अपर्याप्तों के 6, 3 इंद्रिय अपर्याप्त के 5, 2 इंद्रिय अपर्याप्त के 4 और 1 इंद्रिय अपर्याप्त के 3। हाँ, बराबर। हाँ, तो संज्ञा कितनी होगी? 4। गति, चारों गति, इंद्रिय में 5, यानी 5ों, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक 5ों ही इंद्रिय वाले हैं, यानी वो 5ों ही जातियां, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति आदि 5ों। काय में, हाँ, 6 काय। योग कौन कौन से हो गए यहाँ? हाँ, गिना ना आप। हाँ, बराबर। औदारिक मिश्र, हाँ, वैकृत मिश्र, क्योंकि अभी हम मिथ्यात्व भी देख रहे हैं, तो देव और नारकियों में भी हो गए मिथ्या दृष्टि जीव, उनको भी गिनाना है ना। तो औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कारमाण का योग, विग्रह गति में भी होता है। तो इस तरह से 3 योग। वेद, हाँ, 3 वेद। कषाय, 4। ज्ञान कितने हो गए? अभी अपर्याप्त चल रहा है। 3 कैसे हो गए? कौन से 3? नहीं, देखो, अपर्याप्त अवस्था है, विभंग ज्ञान होगा कि नहीं होगा? यहाँ नहीं हो सकता। तो कितने रह गए? 2, कुमति और हाँ कुश्रुत। तो 2 अज्ञान, यानी कुमति कुश्रुत, ये 2 अज्ञान है वहाँ। संयम कौन सा है? असंयम, बराबर। दर्शन, 2 दर्शन। लेशा, अभी मिथ्यात्व गुणस्थान है, अपर्याप्त चल रही है। द्रव्य की 2, कौन सी 2? तापोत और शुक्ल। लेशा चल रही ना, शुक्ल लेशा। देखो, जब विग्रह गति में कारमाण का योग है तब शुक्ल लेशा, उसका कारण भी हमने देखा था, क्योंकि कर्मों के साथ जो विसर्गोपचय चिपके हुए है, तो वो जो स्कंद बन जाता है, विसर्गोपचय सहित जो कारमाण स्कंद है, उसका तो वर्ण शुक्ल वर्ण है, इसलिए यहाँ शुक्ल लेशा कही। और जब मिश्र का योग है तब कापोत लेशा हो जाती है। इस तरह से अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य से 2 लेशा होगी और भाव से मिथ्यात्व गुण स्थान है, अपर्याप्त अवस्था है, कितनी होगी? भाव से 3 नहीं, 6 होगी। देखो देखो, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान है ना, अभी कोई देव मरकर मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जो देव है, वो अपनी शुभ लेशा में मरकर मिथ्यात्व में आता है, नहीं, ये मिथ्या उल्टा समझना। कोई मिथ्या दृष्टि मरकर देवों में उत्पन्न होता है तो वो तो शुभ लेशा में उत्पन्न होगा। मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिरेंचो में जो उत्पन्न होता है तो 3 अशुभ लेशा होती है मिथ्यात्व गुणस्थान में। अब जो देवों में उत्पन्न होता है तो वो शुभ लेशा में मरकर वहां उत्पन्न होता है, तो उसकी लेशा लेना वहां, बराबर है, देवों की अपेक्षा लेना। तो भाव से 6 लेशा मिथ्या दृष्टियों की अपर्याप्त अवस्था में। अब ये जब आगे हम मनुष्यों के वगैरह आलाप देखेंगे ना वहां, तो ये ज्यादा आपको पता चल जाएगा। अभी तो ऐसा लगता है ना आपको कि कुछ समझ में नहीं आता लेशा में, कोई चिंता की बात नहीं है। एक एक गति की हम अलग अलग बात करेंगे तो ये सारी बातें ख्याल में आ जाएगी। भव्य के अभव्य, हाँ, भव्य भी है और अभव्य भी है। सम्यक तो कौन सा है यहाँ पर? मिथ्यात्व, बरोबर। और संगी के असंगी, दोनों, आहारक के अनाहारक, अपर्याप्त है, हाँ, दोनों। कारमाण का योग में अनाहारक है और जब मिश्र होता है तब आहारक है, इसलिए दोनों लेना। और उपयोग भी साकार और अनाकार दोनों, बराबर। अब इसको पढ़ेंगे, एक एक अभी पढ़ते हैं, जरा ख्याल में आए ना आपको। उन्हीं इसी पृष्ठ पर 429 पृष्ठ पर उन्हीं मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर, एक मिथ्यात्व गुण स्थान, अपर्याप्त संबंधी सात जीव समास, संगी के 6 अपर्याप्तियां, असंगी और विकल त्रयों के 5 अपर्याप्तियां और एकेंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां। अभी सभी हमने जीव समास में सभी 7 अपर्याप्त लिए थे ना, हाँ, ये सबकी बात हम देख रहे हैं। अभी प्राण भी सबको पर गिनाए, अभी अभी हमने सब गिनाए थे अभी अपर्याप्तों के, हाँ, संगी के 7, असंगी के 7 प्राण, चतुर इंद्रियों के 6 प्राण, 3 इंद्रियों के 5 प्राण, द्विंद्रियों के 4 प्राण, एकेंद्रियों के 3 प्राण, ये कैसे कैसे है वो हमने अभी गिनाए थे सब। देखो अब आगे पढ़ेंगे, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेंद्रीय जातियां आदि पांचों जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कार्मण, ये 3 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, विभंगावधि ज्ञान के बिना 2 अज्ञान, अपर्याप्त जीव है ना, अभी विभंग ज्ञान यहाँ नहीं पाया जाता, पर्याप्त होने के पश्चात पाया जाता है, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल लेशा और भाव की अपेक्षा 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक दोनों है, मिथ्यात्व है, संगिक असंगिक, आहार कनाहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त आलाप हो गए। अब सासाधन सम्यक दृष्टि, इसमें कितने हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों फर्क होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, नारकियों में वो नहीं होगा, उसकी बात अभी नहीं निकली है। अभी हम यहाँ सासाधन गुणस्थान, इतना ही हमारा क्राइटेरिया, सभी चारों ही गति के हम सासाधन गुणस्थान वाले देखेंगे। तो यहाँ सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप लगाने, कौन लगाना चाहता है? मयंक भाई आप लगाना। देखो सासाधन सम्यक दृष्टि है, अभी गुणस्थान कौन सा अभी बताए ना, हाँ सासाधन, दूसरा जीव समास, हाँ संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, यहाँ संगी वाला एक ही लेना है। अभी बाकी हमने 7 जीव समास देखे थे मिथ्या दृष्टि में, अभी सासाधन में यहाँ तो अभी इसके ऊपर संगी ही जीव लेना। पर्याप्त कितनी होगी संगी में, पर्याप्त भी और अपर्याप्त दोनों लिया आपने, हाँ 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्तियां, प्राण 10 और 9 कैसे? देखो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, संगी पर्याप्तों के 10 और अपर्याप्तों में 7, बहुत अच्छा, संज्ञा 4, गति चारों गति, हाँ इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, देखो नंबर 6 के कॉलम में ई लिखा है, वो इम करना, ई के ऊपर बिंदी देना, तो पांचों इंद्रिय नहीं 1 पंचेंद्रिय। अभी तक तो हमने मिथ्यात्व में 5 जाति देखी थी, अब यहाँ एक ही पंचेंद्रिय जाति लेना है, यानी एक लेना क्राइटेरिया, काय में 1 त्रस्काय, हाँ पहले हमने मिथ्यात्व में 6 लिए थे षटकाय के, हाँ अब योग कौन कौन से हो गए यहाँ पर, हाँ मन के 4, वचन के 4, हाँ वैकृत और औदारिक, और कुछ होगा, हाँ दोनों के मिश्र और कार्मण, क्योंकि हम अभी सासाधन सामान्य देख रहे, तो 13 योग हो गए, यानी आहार द्विक के बिना यहाँ 13 योग होते हैं। वेद कौन से हो गए, तीनों, कषाय 4, ज्ञान 3, कुज्ञान, मिथ्यात्व और सासाधन 2 गुणस्थानों में 3 कुज्ञान है, संयम कौन सा है, असंयम, दर्शन 2 दर्शन, लेशा द्रव्य की, हाँ द्रव्य की 6 और भाव की 6, अच्छा है बराबर है। अभी यहाँ भव्य के अभव्य है, भव्य ही अभी दूसरा है ना गुणस्थान, एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है तो अभी वो भव्य ही है, अभव्य जीव सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ देखो अभी सम्यक तो कौन सा है यहाँ, साधन सम्यक तो है, संगी के असंगी, संगी और आहारक अनाहारक दोनों हैं और उपयोग दोनों साकार और अनाकार दोनों। देखो अब इसी के पर्याप्त पर घटाना है, बाद में हम पढ़ेंगे एक साथ साधन सम्यक दृष्टि के पर्याप्त, अकेले पर्याप्त देखने अभी। हाँ कौन बताता है, हमंदा बिन आप बताना। गुणस्थान, हाँ साधन, जीव समास पर्याप्त है, देखो अभी संगी पर्याप्त, पर्याप्ति है छह पर्याप्ति, प्राण हाँ दस प्राण, संज्ञा चारों संज्ञा और गति चारों गति, इंद्रिया एक पंचेंद्रिय, काय त्रस काय, हाँ बराबर। अब योग कितने हो गए, कौन कौन से हो गए बताना। संगी जीव है, मन के हो गए कि नहीं, पर्याप्त है हाँ, मन के चार, वचन के चार और औदारिक और एक वैकरिक, बराबर दस, योग दस हो जाएगा। वेद तीनों, कषाय चार, ज्ञान पर्याप्त है ना हाँ तीन, कूद ज्ञान, संयम असंयम, दर्शन दो दर्शन, लेशा पर्याप्त है हाँ, द्रव्य की छह और भाव की, हाँ भाव की भी छह, भव्य के अभव्य, भव्य ही है हाँ, सम्यक तो कौन सा है साधन बराबर, संगी के असंगी, संगी आहारक के अनाहारक पर्याप्त है ना हाँ, आहारक और उपयोग साकार अनाकार। अब देखो इसी के अपर्याप्त भी लगा लेना, अश्विन भाई आप कहना साधन सम्यक दृष्टि अपना आलाप चल रहा है उसमें अपर्याप्तों को बताना है, गुणस्थान साधन, जीव समास हाँ, संगी अपर्याप्त बराबर, पर्याप्ति छ अपर्याप्ति, प्राण हाँ सात, देखो ये नंबर आठ का कॉलम है उसमें सात अप लिखा है, वो सात लिखना प्राण, अपर्याप्तों में सात प्राण है, ये पर्याप्तियों में पर्याप्ति अपर्याप्ति लिखते, प्राण में तो बस कितने प्राण है वो गिनाते ना। संज्ञा कितनी होगी चार, गति बहुत अच्छा, देखो साधन मरकर नरक नहीं जाता, यानी साधन अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गति वाले जीव हो गए, तो अन्य तीन नरक छोड़कर, तो गति में तीन ही लिखना, साधन वाले की गति में तीन ही लिखना है, नरक बिना तीन गति, और इंद्रिय एक पंचेंद्रिय, वो कॉलम में सुधारना, वो पंच हुआ है पंचे करना उस, काय न त्रस काय, योग कितने हो गए यहाँ अपर्याप्त है, औदारिक मिश्र वैकरिक मिश्र होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, अरे देव है ना, देवों के वैकरिक मिश्र है ना, भले नरक में नहीं है देवों में है हाँ, वैकरिक मिश्र और कारमण बराबर है, वेद तीनों, कषाय चार, ज्ञान दो, ज्ञान दो कुज्ञान कुमति और कुश्रुत अपर्याप्त, अभी विभंग को नहीं लेना है, संयम में हाँ एक असंयम, दर्शन चक्षु अचक्षु दोनों, लेशा बताना भी, द्रव्य की दो और भाव की छह, भव्य के अभव्य, भव्य सम्यक तो कौन सा होगा साधन, संगी के असंगी, संगी आहारक अनाहारक दोनों है और उपयोग भी साकार अनाकार दोनों। देखो ये नंबर आठ के कॉलम जो हमने देखे थे ना टेबल, उसमें भव्य के आगे जो सम्यक्त्व वाला कॉलम है उसमें स के ऊपर बिंदी आई वो निकाल लें, वो सम्यक्त्व का कॉलम है, बराबर। अब इसको पढ़ेंगे हम, तीनों के लेंगे, सम्य सासाधन सम्य दृष्टि के सामान्य पहले लेंगे, फिर पर्याप्त और अपर्याप्त, हमने जो अभी देखे थे उसी को अभी यहाँ पढ़ेंगे हम। देखो, एक दूसरा गुणस्थान, ये कौन सा आलाप, 430 पेज है डॉक्टर, पहले वहाँ से लेना है। सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के उघालाप कहने पर, एक दूसरा गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छह पर्याप्तियाँ छह अपर्याप्तियाँ, 10 प्राण 7 प्राण, चारों संज्ञाएँ चारों गतियाँ, पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, आहारक द्विक के बिना 13 योग, तीनों वेद चारों कषायें, तीनों अज्ञान, असंयम चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव रूप छह लेशाएँ, भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्व, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब आगे, अभी वही गुणस्थान है, अभी हम पर्याप्तों में देखेंगे। तो उन्हीं सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर, एक दूसरा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, आहार द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना 10 योग, पहले हमने 13 देखे थे ना दोनों को मिलकर, अभी उसमें अपर्याप्त संबंधी तीन कौन से नहीं हो गए, हाँ हाँ, औदारिक मिश्र और वैकृत मिश्र और कारमान, ये तीन और माइनस कर देना तो 10 योग, तीनों वेद, आहारक तो हमने पहले ही निकाले थे, देखो 15 में से आहारक द्विक निकाले, आहारक भी और आहारक मिश्र भी, तो 13 रह गए थे, तो सासाधन वाले में 13 होते पर्याप्त पर्याप्त मिलकर, हाँ, और उसमें औदारिक मिश्र वैकृत मिश्र और कारमाण तीन गए तो 10 रह गए। अब तीनों वेद चारों कषायें, कौमा देना यहाँ, तीनों अज्ञान असंयम चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव रूप छह लेशा, यानी द्रव्य की भी छह और भाव की भी छह, भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व, सौनिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसी में लेना है हमको, उसी सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर, एक दूसरा गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तियां, सभी अपर्याप्त अपर्याप्त लेना है ना, मनोबल वचन बल और श्वासोश्वास के बिना 7 प्राण, ये संगी जीव है, पर्याप्तों में 10 प्राण होते हैं और अपर्याप्तों में 3, ये 3 गए तो 7 रह गए, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं नरक गति के बिना 3 गतियां, देखो पर्याप्तों में तो हमने चारों गतियां ली थी, सासाधन के पर्याप्त जीव में चारों गतियां ली थी, और अपर्याप्तों में 3 ही गति क्यों, हाँ बराबर, हाँ, ये सासाधन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, तो नरक गति की जो अपर्याप्त अवस्था है वो सासाधन वहां उसमें गुणस्थान नहीं होगा, बराबर। पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, आहारक मिश्र के बिना अपर्याप्त संबंधी 3 योग, यानी वैकृत मिश्र औदारिक मिश्र और कारमाण, तीनों वेद चारों कषायें, विभंग ज्ञान के बिना 2 अज्ञान, अपर्याप्त अवस्था है ना, विभंग ज्ञान नहीं होता वहां, पर्याप्त होने के पश्चात उनको प्राप्त होता है नरक में, और बहुप्रत्यय भी जो अवधि ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, या गुण प्रत्यय भी क्यों ना हो तो वो पर्याप्त अवस्था में प्राप्त होता था। असंयम चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस तरह हमने ये सासाधन के देखे। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के ओघालाप कहेंगे हम, तो सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का हम पहले अपर्याप्त देखेंगे, अपर्याप्त कौन कहेगा, देवेंद्र भाई, क्यों क्या हुआ, हंसने क्या हुआ, नहीं होता, अच्छा तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में ओघालाप अपर्याप्त नहीं होता, क्यों नहीं होता, हाँ बराबर। देखो तीसरे गुणस्थानों में मरण ही नहीं है, किसी भी गति में हो तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, तो इसलिए वो तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था ही नहीं पाई जाएगी। कोई भी पर्याप्त जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर या सादी मिथ्याष्टि पहले में से तीसरे में जा सकता है, परंतु वहाँ तीसरे में मरता ही नहीं है, तो तीसरे के साथ अन्य गति में जाने का सवाल नहीं है। तो देखो इसलिए मिथ्या दृष्टि में एकमात्र आलाप होगा वो पर्याप्तों का ही होगा, यानी उसमें मिश्र ये सॉरी सामान्य और पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे तीन भेद नहीं होंगे, एकमात्र आलाप होगा जिसमें वो पर्याप्त आलाप होगा। हाँ अब कहना उसको। हाँ बोलो। हाँ गुणस्थान तीसरा बराबर, जीव समास संगी पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय को ही हम संगी कह देते हैं, तो संगी पर्याप्त कहना। हाँ पर्याप्ति छः बराबर, प्राण दस, संज्ञा हाँ, गति कौन सी होगी, चारों गति में होते हैं ना सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, हमको तो गुणस्थान का हमारा आलाप चल रहा है, तो चारों ही गति के तीसरे गुणस्थान वाले इसमें लेना है। हाँ इंद्रिया एक पंचेंद्रिय जाति, हाँ काय त्रस काय बराबर, योग हाँ मन के चार वचन के चार, और कोई होगी हाँ औदारिक और एक रेक, मिश्र हो गए कि नहीं हो गए, नहीं है पर्याप्त जीव है। हाँ वेद तीनों वेद कषाय चारों, ज्ञान हाँ देखो मिश्र है, अज्ञान और ज्ञान का मिला हुआ ऐसा मिश्र परिणाम है, जैसे यहाँ भावों में भी मिश्रपना पाया जाता है ना, सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, दोनों का मिला हुआ ऐसा जात्यंतर अन्य ही जाति का परिणाम है, खोटा परिणाम है ये। वैसे ज्ञान में भी मिला हुआ जैसे कुमति और मति ज्ञान, इनका मिला हुआ ऐसा मिश्र ज्ञान, तीनों ही जो है वो मिश्र ज्ञान हो गए। तीन और तीन छः नहीं लेना, तीन प्लस तीन, तीन अज्ञान ही है, ज्ञान अज्ञान का मिला हुआ ऐसा मिश्र ज्ञान कहते इसको। संयम असंयम, दर्शन कौन कितने हो गए, दो दर्शन चक्षु और अचक्षु, ये मिश्र है इसलिए और मिश्र दर्शन नहीं लेना कोई। हाँ लेशा देखो पर्याप्त जीव है, द्रव्य की छः हाँ भाव की छः, चौथे गुणस्थान तक हुए पर्याप्त जीवों में तो भाव से तो छः लेशाएं पाई जाती। भव्य की अभव्य, भव्य है हाँ, सम्यक तो कौन सा होगा यहाँ पर, सम्यक मिथ्यात्व, संगी संगी है, आहारक के अनारक, आहारक ही है अपर्याप्त नहीं ना इसमें हाँ, और उपयोग दोनों हैं। देखो इसको पढ़ेंगे, सम्यक मिथ्याश्री जीवों के ओघालाप कहने पर इसी पृष्ठ पर 432 चल रहा अपना, एक तीसरा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, आहारक द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना दस योग। तो दस योग कौन से हमने देखे थे, हाँ चार मनोयोग, चार वचन योग, हाँ एक वैक्रियक और एक औदारिक, इस तरह से दस देखे थे। हाँ वेद तीनों वेद तीसरी लाइन, चारों कषायें, अज्ञान मिश्रित आदि के तीनों ज्ञान जिसको मिश्र ज्ञान कहा है, असंयम चक्षु अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव रूप छह लेशा यानी द्रव्य की भी छह और भाव की भी छह, भव्य सिद्धिक सम्यक मिथ्यात्व, सौनिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत देखो यहाँ विशेष लिखा है, विशेष मिश्र गुणस्थान वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए मिश्र गुणस्थान के उक्त सामान्यालाप ही यानी सामान्य आलाप ही पर्याप्त के समझना चाहिए, यानी यहाँ तीन ऐसे भेद ही नहीं होते, जो कुछ है वो एक ही आलाप है। अब अगला हम देखेंगे असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर, तो असंयत में कितने हो गए, सामान्य और पर्याप्त पर्याप्त हो गए कि नहीं हो गए? हाँ हो गए, तीनों हो गए। हाँ तो पहले हम सामान्य देखते हैं, फिर क्रम से देखेंगे। कौन लगाना चाहता है? हाँ विनोद भाई आप लगाना। असंयत सम्यक दृष्टि है, हाँ गुणस्थान, हाँ अविरत सम्यक तो गुणस्थान है। जीव समास, संगी पर्याप्त हो गए कि अपर्याप्त हो गए? संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, असंगी में नहीं होगा। हाँ पर्याप्त कितनी है देखो, छ पर्याप्त और छ अपर्याप्त बराबर। प्राण, हाँ बिना ख्याल में आता है ना, प्राण में घोटाला हो रहा है ना। देखो दस और सात, हमने संगी के पर्याप्त देखे तो पर्याप्तों में कितने प्राण है? हाँ दस प्राण है, और अपर्याप्तों में बराबर सात प्राण है। संज्ञा चारों गति, चारों गति, चारों गतियों में है ना सम्यक दृष्टि जीव, हाँ तो चारों गति है। इंद्रिया एक पंचेंद्रियों में ही हो गए। हाँ काय त्रस काय, हाँ बराबर है। योग हाँ चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक एक, वैक्रिय एक, दोनों के मिश्र और एक कारमान, इससे कितने हो गए? तेरह। कौन से नहीं लिए? आहार द्विक के बिना तेरह है, इसमें हमने पर्याप्त अपर्याप्त एक साथ सब ले रहे हैं। वेद तीनों वेद है, कषाय ज्ञान तीन सु ज्ञान, हाँ इसलिए अपर्याप्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान रहता है। संयम असंयम दर्शन, हाँ अभी अवधि ज्ञान लिया तो अवधि दर्शन को भी इसके साथ लेना है, अपर्याप्त अवस्था में भी और पर्याप्त में तो होता ही है। हाँ लेशा द्रव्य और भाव की छः छः लेशा है। भव्य के अभव्य, हाँ सम्यक तो कौन से हो गए? हाँ कौन से तीन? हाँ औपशमिक सम्यक, शाओपशमिक और शायिक बराबर। संगी आहारक के अनाहारक दोनों हैं और उपयोग भी दोनों साकार और अनाकार। तो ये तो सामान्य हुआ, अभी पहले अपर्याप्त लगाना। हाँ देवेंद्र भाई जरा स्लोली। हाँ असंयत सम्य दृष्टि के अपर्याप्त आलाप कहना है आपको। तो गुणस्थान चौथा, जीव समास संज्ञ अपर्याप्त, पर्याप्ति छ अपर्याप्ति बराबर। प्राण हाँ सात, संज्ञा चार, गति चारों, इंद्रिया एक पंचेंद्रिय, काय योग औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र और कारण बराबर है। वेद तीनों वेद, हाँ देवेंद्र भाई कहाँ है, कौन सा आलाप चल रहा है? सम्यक दृष्टि है अपर्याप्त है, सम्यक दृष्टि अपर्याप्त, आप गड़बड़ घोटाला बहुत करते हैं। सम्यक दृष्टि अपर्याप्त कितने हो गए? दो। कौन से? पुरुष वेद और नपुंसक वेद। देखो नरक में भी जाएगा ना सम्यक दृष्टि, मर कर नरक में जाता है, वहां तो नपुंसक एक ही वेद होता है, और अन्य तीन गति में जाएगा तो पुरुष वेद ही होगा। अब सम्यक दृष्टि है तो मरकर स्त्री नहीं होगा, हमने पहले देखा था षडाला में भी देखा था कि नीचे के छह नरकों में नहीं जाता है, स्त्री नहीं होता है, भवनत्रिक में नहीं जन्मता है, आदि आदि बातें देखी थी। तो स्त्री बिना दो वेद, हाँ कषाय चार, ज्ञान तीन है, अभी चौथा गुण स्थान है अपर्याप्त में अवधि ज्ञान भी रहेगा उसको। संयम असंयम, हाँ दर्शन तीन बराबर, लेशा द्रव्य की दो और भाव की हाँ छो। देखो समय दृष्टि है अपर्याप्त में छो, देखो जो नरक में जो है ना अपनी अपनी लेशा में मरता है, अभी कोई पहले से छठे नरक तक का जो कोई नारकी सम्यक दृष्टि मरेगा तो ऊपर के नरकों में कापोत्लेशा होती है, बीच वालों में नील होती है और छठे में तो कृष्ण नील कृष्ण लेशा होती है। तो वहां का जीव सम्यक दृष्टि मरेगा तो उसकी वही लेशा रहेगी, तो वो कृष्ण लेशा के साथ या कपोत के साथ या नील के साथ या मनुष्य में वो जन्म लेगा, तो वहां उसके अपर्याप्त अवस्था में वही तीन अशुभ लेशा हो सकती है। और जो देवों से आएंगे तो अपनी अपनी शुभ लेशाओं में आएंगे। हाँ, तो क्या कहेंगे हमने, हाँ, लेशा में हमने द्रव्य की तो दो देखी थी और भाव से छह देखी थी। भव्य के अभव्य, हाँ भव्य सम्यक्त्व औपशमिक नहीं होगा,
नहीं।
क्यों नहीं होगा?
प्रथम
औपशम सम्यक में मरण नहीं और द्वितीय औपशम वाला, हाँ, तो यहाँ हमने कितनी गति देखी, चारों गति देखी है ना। देखो हमारा आलाप कौन सा है, असंय सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त आलाप है, तो चारों गति के सम्यक दृष्टि अपर्याप्त लिए हमने, हाँ, तो उसमें तीनों हो जाएगी ना, औपशमिक द्वितीय औपशम वाला जाएगा ऊपर देवों में, हाँ, तो तीनों ही है औपशमिक शायक और शायोपशमिक, संगी के असंगी संगी, हाँ, आहारक अनाहारक दोनों है, बराबर है, उपयोग दोनों है। अब पर्याप्तों की कौन बात करेगा, असंयत समय दृष्टि पर्याप्त आलाप, हाँ अरविंद आप बताना, हाँ गुणसान चौथा जीव समाज संगी पर्याप्त पर्याप्ति छे प्राण दस संज्ञा चार गति चारो इंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय काय त्रस्काय योग, हाँ मन के चार वचन के चार और औदारिक वैकरिक बराबर एक दस योग, वेद तीनों कषाय चारो ज्ञान तीन संयम असंयम दर्शन, हाँ तीन दर्शन लेशा द्रव्य की और भाव की दोनों छे छे, हाँ भव्य भव्य है। सम्यक तो कौन से हो गए, तीनों संगी के असंगी संगी आहार रखी है और उपयोग दोनों, बहुत अच्छा। अभी हम इसको पढ़ेंगे इसमें से, देखो 432 पृष्ठ पर, असंयत समय दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर एक चौथा गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास सामान्य देख रहे हैं हम, चौथे गुणस्थान छह पर्याप्तियां छह अपर्याप्तियां दस प्राण सात प्राण चारों संज्ञाएं चारों गतियां पंचेंद्रिय जाति त्रस काय आहारक द्विक के बिना तेरह योग चारों संज्ञाएं चारों सॉरी खालची नीचे की लाइन तेरह योग हो गए ना अभी वेद वाला तीनों वेद चारों कषाएं तीन ज्ञान असंयम केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन द्रव्य और भाव रूप छह लेशाएं भव्य सिद्धिक औपशमिक शायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यक्त्व सौनिक आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये तो सामान्य आलाप हो गया। अब असंयत असम्यक दृष्टि पर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर अभी जो बताया ना अरविंद भाई ने, देखो एक चौथा गुणस्थान संगी पर्याप्त एक जीव समास छह पर्याप्तियां दशो प्राण चारों संज्ञाएं चारों गतियां पंचेंद्रिय जाति त्रस काय आहार द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना दस योग, कौन से दस, मन के चार वचन के चार औदारिक और वैकरिक सभी गतियों के मिलाकर देखे हमने, तीनों वेद चारों कषायें तीन ज्ञान असंयम केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन द्रव्य और भाव रूप छह लेशाएं भव्य सिद्धिक औपशमिक शायिक और क्षायोपशमिक के तीन सम्यक्त्व सौनिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, ये तो पर्याप्त जीवों की बात हो गई। अब 434 पृष्ठ पर आए हम, उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर एक चौथा गुणस्थान एक संगी अपर्याप्त जीव समास छह अपर्याप्तियां मनोबल वचन बल और आनापान के बिना सात प्राण, या आनापान कौन सा प्राण है, हाँ श्वासोश्वास प्राण कहो या आनापान को एक ही बात है। देखो अपर्याप्त जीव है ना, तो इसके कितने प्राण है बिना ख्याल में आता है, हाँ चारों संज्ञाएं चारों गतियां पंचेंद्रिय जाति त्रस काय औदारिक मिश्र वैकरिक मिश्र और कारमाण ये तीन योग और पर्याप्त जीवन की बात चल रही है। देखो, स्त्री वेद के बिना दो वेद, चारों गतियों की बात कर रहे हम, तो अब यहाँ दो वेद लेना, क्योंकि नरक में नपुंसक वेद होगा सबको, कौन सा भी गुणस्थान होगा, और अन्य में सम्यक दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में पुरुष वेद होगा। चारों कषाय मति श्रुता और अवधि, ये तीन ज्ञान, असंयम चक्षु और अचक्षु, अचक्ष हुआ है और चक्षु करना, नीचे उकार देना उसको ना, हो गया चक्षु अचक्षु और अवधि, ये तीन दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, और भाव से छह लेशाएं होती हैं। छह लेशाएं होने का यह कारण है कि नरक गति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में कृष्ण नील और कापोत, ये तीन लेशाएं पाई जाती है। अभी हमने देखा था ना, लेशाओं के आगे भव्य सिद्धि तीनों सम्यक तो होते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्तों को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते। तो क्या कहते हैं कि चारों गतियों में जो प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होता है, तो प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में मरण नहीं होता है, तो अपर्याप्त काल में प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होगा। परंतु यहाँ तो कह रहे हैं कि तीनों सम्यक्त होते हैं, तो उसकी बात भी आगे आएगी। देखो, शंका, यह कैसे जाना जाता है कि उपशम समय दृष्टि जीव मरण नहीं करते? समाधान, आचार्यों के वचन से और सूत्र व्याख्यान से जाना जाता है कि उपशम समय दृष्टि जीव नहीं मरते हैं। ये कौन से उपशम समय दृष्टि की बात चल रही है? प्रथमोपशम सम्यक्त की। प्रथमोपशम का क्या अर्थ है? पहली बार करेगा वो प्रथमोपशम? हाँ, क्यों नहीं? देखो, जब जब मिथ्यात्व अवस्था में से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक दृष्टि होगा, तो उसको कहेंगे प्रथम उपशम। कौन से कर्मों का उपशम होता है? हाँ बोलो, हाँ देवेंद्र भाई बोलो। हाँ, अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोह की तीन, सादी होगा तो तीन, सादी मिथ्या दृष्टि, और अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो एक मिथ्यात्व प्रकृति है, तो उसके पांच। इसलिए क्या कहते हम, पांच या सात प्रकृतियों का उपशम करके जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करता है, भले कोई चौथे में जाएगा, कोई पांचवें में जाएगा, कोई सातवें में जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि। और द्वितीय उपशम कब कहते हैं? हाँ, हाँ, द्वितीय उपशम यानी जब क्षोपशम सम्यक दृष्टि जीव जो है, क्षोपशम में से श्रेणी चढ़ने के पहले जो दोबारा इन कर्मों का उपशम करता है, ये मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, वहां तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, परंतु दोबारा तीनों ही प्रकृतियों का उसको अंतर करके वहां उपशम कर देता है। पहले क्षोपशम अवस्था में वो साधारण सदवस्था रूप उपशम था, और अभी जो श्रेणी मांडेगा द्वितीयोपशम सम्यक तो करेगा, तो उसमें तीनों में ही अंतर कर देता है, तो उसको कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ये सातवें गुणस्थान में जब जीव है वहाँ ये कार्य होता है। अब इस पुस्तक में तो ऐसा लिखेंगे चौथे से सातवें तक कहीं भी होता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त की बात है। अब यहाँ पढ़ते हम क्या लिखते हैं, फिर से समाधान, आचार्यों के वचन से और सूत्र व्याख्यान से जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं। चारित्र मोह के उपशम यानी उपशम श्रेणी वाले जीव मरते हैं और देवों में उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में उपशम सम्यक तो पाया जाता है। अब ये जो उपशम सम्यक तो है वो द्वितीयोपशम सम्यक तो की बात चल रही है। यहाँ द्वितीयोपशम ऐसा नाम नहीं लिखा है, परंतु हम इसको जानने के लिए द्वितीयोपशम अपने समझने के लिए वहाँ आप लिख के रखना साइड में। हाँ, अब वेदक सम्यक तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है, यानी क्षोपशम सम्यक्त के साथ मरकर कोई देव और मनुष्य में तो जन्मते ही है, क्योंकि वेदक सम्यक्त के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं पाया जाता। देखो ये बात, ये कृतकृत्य की यहाँ बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। परस्पर गमनागमन यानी क्या? कोई क्षोपशम सम्यक दृष्टि मनुष्य है, वो मरकर उसी क्षोभशम के साथ देवों में उत्पन्न हो सकता है। और कोई क्षोभशम सम्यक दृष्टि देव है, वो मरकर उसी क्षोभशम सम्यक्त के साथ मनुष्य में जन्म सकता है। अब आगे की क्या बात है, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा तो वेदक सम्यक्त्व तिर्यंच और नारकी जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाता है। नारकी जीवों में जो वेदक सम्यक्त्व पाया जाता है वो मात्र कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा है तिर्यंच और नारकियों में। देखो ये रूल हमारे लिए भी नया है, हमने तो इतनी डिटेल से इसको नहीं जाना था। क्यों अरविंद भाई, आपका यही प्रश्न था ना, कृतकृत्य वेदक। अभी हम नरक गति में तिर्यंच गति में पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे अपर्याप्त काल में वेदक होता है परंतु वो कृतकृत्य वेदक होता है। मनुष्य और देवों में अभी हमने देखा था, मनुष्य और देव जो असंयत है, असंयत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले अपर्याप्त अवस्था में, तो वहां तो वेदक सम्य दर्शन पाया जाता है, उसके साथ मरकर वो अन्यत्र दोनों आपस में गमनागमन होता है। परंतु जो कोई सम्य दृष्टि मरकर तिर्यंच में उत्पन्न होता है वहां कौन सा वेदक पाया जाएगा, कृतकृत्य वेदक। ये कृतकृत्य वेदक वाला कौन होगा, कौन मरकर वहां तिर्यंच में जाएगा, मनुष्य ही मरकर जाएगा। तो मनुष्य मरकर कृतकृत्य वेदक का अर्थ समझते हो नहीं, देखो फिर कहते हम कृतकृत्य वेदक क्या है ना, क्या है तो ऐसा वेदक। तो देखो जब जीव मनुष्य क्षायिक सम्य दर्शन प्राप्त करता है तो सबसे पहले क्या होता है उसके, तो अनंतानुबंधी का उसको अक्षय कर देता है। फिर एक अंतर्मूर्ति में मिथ्यात्व प्रकृति जो है, दर्शन मुनि की तीन प्रकृति है ना, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति का तो उदय चल रहा है। ऐसा क्षोभशम सम्यक दृष्टि जीव पहले अनंतानुबंधी का क्षय करता है, उसके पश्चात एक अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, फिर एक अंतर्मूर्त वहां विश्राम कहते कुछ नहीं होता, फिर एक अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय होता है, फिर एक अंतर्मूर्त रुकता है, और उसके पश्चात एक अंतर्मूर्त में जो सम्यक प्रकृति है उसका क्षय होता है। तो ऐसा नियम है कि मिथ्यात्व का जब तक क्षय चल रहा है उसके बाद वाला अंतर्मूर्त और सम्यक मिथ्यात्व का जब तक क्षय हो रहा है वहां तक जीवों का मरण नहीं होता। यानी मिथ्यात्व का क्षय प्रारंभ कर दिया और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने तक का जो अंतर काल है वहां तक जीवों का मरण नहीं होता। तो वहां पर आके कोई मर गया तो ये मनुष्य ही, ये जो क्षायिक सम्यक्त्व का जो प्रारंभ है, जो काम जो स्टार्ट किया उसने, तो ये तो कर्म भूमि के मनुष्यों में ही होता है, ना भोग भूमि के मनुष्यों में होता है, ना देवों में होता है, ना तिर्यंचों में होता है, ना नारकियों में होता है। तो ये जो क्षय करने का कार्य कर्म भूमि के मनुष्यों में होता है तो ये जो अब यहाँ पर आकर मर सकता है, आयु पूरी हुई तो सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने के पश्चात वहां अगर उसका मरण होगा तो जो पूर्व में आयु बांधी होगी तो चारों गति में जिसका आयु बांधा था वहां वो चला जाएगा। तो उसको हम कहेंगे ये कृतकृत्य वेदक अभी मरकर अन्य गति में उत्पन्न हुआ है, तो वहां जाकर अभी एक अंतर्मूर्त काल में वो उसका जो सम्यक प्रकृति का भी क्षय करने का कार्य करेगा। यानी वो है तो अभी तक सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए उसको हम वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखो कि मनुष्य और देवों के अपर्याप्त काल में तो कोई भी क्षोभशम सम्यक दृष्टि होगा, परंतु तिर्यंच और नारकियों के जो अपर्याप्त काल में हम क्षोभशमिक सम्यक तो होता है ऐसा कहते हैं, तो कोई जीव मनुष्य में से क्षोभशम ऑर्डिनरी क्षोभशम के साथ मरकर तिर्यंच और नारकी नहीं होगा, तो कौन सा हो सकता है, तो कृतकृत्य वेदक हो सकता है। यानी कृतकृत्य अवस्था में मरकर वो नरक में या तिर्यंचों में जन्म सकता है, या अपर्याप्त अवस्था में कौन हो सकता है, क्षायिक सम्य दृष्टि जिन्होंने सम्य दर्शन होने के पहले पहले तिर्यंचायु या नरकायु बांध ली है, तो क्षायिक सम्य बाद में सम्य दृष्टि भी हुआ, क्षायिक सम्य दृष्टि भी हुआ तो वो मरकर नरक या तिर्यंच में जाएगा। श्रेणी के राजा मालूम है, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ मरकर नरक में गया था। देखो इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, तीसरे लाइन से फिर। वेदक सम्यक्त्व तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में भी पाया ही जाता है, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं पाया जाता। यानी देवों के और मनुष्यों के अपर्याप्त अवस्थाओं में वो वेदक सम्यक्त्व, ऑर्डिनरी वेदक सम्यक्त्व पाया जाएगा, परंतु कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा तो वेदक सम्यक्त्व तिर्यंच और नारकी जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाता है। उनके अपर्याप्त काल में ऑर्डिनरी क्षोभशम सम्यक्त्व नहीं पाया जाएगा, मात्र कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा उनके अपर्याप्त काल में वेदक सम्यक्त्व पाया जाएगा। पर्याप्त होने के बाद वो कोई क्षोभशम सम्यक् दृष्टि होता है उसकी बात यहां नहीं चल रही है, अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है। क्षायिक सम्यक्त्व भी सम्यक दर्शन के पहले बांधी गई आयु के बंध की अपेक्षा से चारों ही गतियों के अपर्याप्त काल में पाया जाता है। यानी कोई जीव है उसने चारों ही गति संबंधी कोई आयु बांधी हो, किसी ने नरकायु बांधी, किसी ने तिर्यंच आयु, किसी ने मनुष्य आयु, किसी ने देवायु, तो उसको सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं आती है। सम्यक तो हो सकता है, अभी आयु तो बांध ली है और सम्यक दर्शन हुआ तो जाएगा तो उसी भाव में, उसी गति में जाएगा। सम्यक्त्व के बाद सम्यक्त्व में मरकर जो पहले आयु का बंध हुआ है, यानी चारों ही गति में ये सम्यक दृष्टि पैदा हो सकते हैं। नरक में जाएगा तो पहले नरक में जाएगा, तिर्यंच में जाएगा तो भोग भूमि का तिर्यंच होगा, मनुष्यों में जाएगा तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, और देव में जाएगा तो देव में उत्पन्न होगा, वो भी भवनत्रिक में नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा विमानवासी। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि जीव के अपर्याप्त काल में तीनों ही सम्यक्त्व होते हैं। ये तीन सम्यक्त्व कैसे होते हैं? या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है, या वेदक सम्यक्त होता है, या क्षायिक सम्यक्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो सम्यक्त्व के आगे सौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये तो हमें चौथे गुणस्थान का आलाप हो गया। अभी संयता संयत जीवों के आलाप कहने पर तो इसमें कितने आलाप हो गए? पर्याप्त, अपर्याप्त, सामान्य सब हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, तो कौन से होगा? एकमात्र पर्याप्त है, पांचवा गुणस्थान है, तो एकमात्र पर्याप्त आलाप होगा। देखो एक पहले कौन बताना चाहता है? अभी मंदाबेन बताओ आप। संयता संयत, हाँ, गुणस्थान कौन सा है? हाँ, देश संयत, पांचवा गुणस्थान। जीव समास संज्ञा पर्याप्त बराबर पर्याप्ति, छह पर्याप्ति, प्राण 10 प्राण, संज्ञा चारों संज्ञा, गति, हाँ अभी गति में चारों नहीं कहना, दो ही गति है, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, पांचवा गुणस्थान है ना, देवों में और नारकियों में पाया ही नहीं जाता है, तो तिर्यंच और मनुष्यों में पाया जाता है। दो गति इंद्रिया, हाँ, एक पंचेंद्रिय काय त्रस काय योग, गिनाओ कौन कौन से, हाँ, मन के चार, वचन के चार, और औदारिक वैकरिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हाँ बराबर, नव योग। वेद तीनों वेद है। देखो कोई भी किसी भी वेद का जीव है वो तो सम्यक तो भी प्राप्त कर सकता है, ऊपर के गुणस्थानों में जाने मोक्ष भी चला जाएगा, ख्याल है? कषाय चार, ज्ञान तीन, संयम कौन सा होगा? संयमा संयम बरोबर, दर्शन तीन, लेशा द्रव्य से चेर भाव से, हाँ अभी ये शुभलेशा पांचवें गुणस्थान से शुभलेशा ही होगी, भव्य, हाँ भव्य। सम्यक तो कौन कौन से हो गए? तीनों, हाँ औपशमिक, शैपशमिक और क्षायिक, पांचवा गुणस्थान है। अब मैं पूछू तिर्यंच गति में कौन कौन से सम्यक तो होते हैं पांचवे में? तो तीनों हो सकते, कैसे? देखो देखो तीर्यंच में एक शायिक समय दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है। किसको होता है? तो जिसने समय दर्शन होने के पूर्व तीर्यंच आयु बांधी है, बाद में समय दर्शन प्राप्त कर दिया है, और फिर वो तो बाद में एक शायिक समय दर्शन भी हुआ, तो वो भोग भूमि में एक शायिक समय दर्शन के साथ जन्मेगा। परंतु क्या भोग भूमि में उसको पांचवा गुणस्थान हो सकता है? तो नहीं हो सकता। जैसे देवों में ही चार ही गुणस्थान है, वैसे भोग भूमि के जीवों में भी चार ही गुणस्थान है। वहाँ संयम असंयम वाला नहीं होता, उन जीवों की वैसी पात्रता नहीं पाई जाती। तो तिर्यंच गति में तो हम क्षायिक सम्यक्त्व जो चौथे तक ही कहेंगे, पांचवे वाले को नहीं कहेंगे। चौथे तक है ना, चौथे में ही कहेंगे, पांचवे वाले में नहीं। तो यहाँ तो हमने दो ही गति एक साथ ली है, तो इसलिए हम तीनों ही सम्यक्त्व कहेंगे। संगी की असंगी, हाँ संगी, आहार के अनागार, आहार उपयोग, हाँ दोनों। अब इसको पढ़ेंगे, देखो ऊपर पहले पृष्ठ पर 435 पृष्ठ पर। संयता संयत जीवों के उघालाप कहने पर एक पांचवा गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच और मनुष्य, ये दो गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक कायोग, ये नौ योग। देखो यहाँ वैक्रेक वाले को अभी नहीं लेना है, संयमा संयम है ना, पांचवा गुणस्थान है। तीनों वेद, चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, संयमा संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य की अपेक्षा छह लेशाएं, भाव की अपेक्षा तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है, यानी तीन शुभ लेशाएं होती है। कितने ही आचार्य शरीर रचना के लिए आए हुए परमाणुओं के वर्ण को लेकर संयता संयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों को भाव लेशा का वर्णन करते हैं, यानी द्रव्य लेशा की अपेक्षा भाव लेशाओं का वर्णन करते हैं, किंतु यह उनका कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर द्रव्य और भाव लेशा में फिर कोई भेद ही नहीं रह जाता है, और जो लिंपन करती उसे लेशा कहते हैं, इस आगम वचन का व्याघात भी होता है, यानी उसके साथ विरोध आता है। इसलिए कर्मलेप का कारण होने से योग और कषाय से अनुरंजित प्रवृत्ति ही भाव लेशा है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये कर्म का लेप करती है, कर्म का बंध कराती है, तो कषाय और योगों का ऐसा मिश्रित परिणाम जो है, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, उसको यहाँ भावलेशा कहला है। इसलिए वो द्रव्य लेशा भले छह प्रकार की होगी, परंतु भाव से तो तीन शुभ लेशाएं ही होती है, कृष्णादि तीन अशुभ यहाँ नहीं होती। लेशाओं के आगे भव्य सिद्धिक, तीनों सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ प्रमत्त संयत, छठा गुणस्थान अभी लगाएंगे हम। हाँ, कौन लगाना चाहते हैं? हम एक भैया, आप लगाना। गुणस्थान प्रमत्त, जीव समास पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं लेना। हाँ, पर्याप्त को भी लेना है, बराबर। देखो यहाँ आहार वृद्धि होती है ना, तो आहार शरीर बनाएगा, तो वहाँ वो अपर्याप्त वाला भी आलाप यहाँ पाया जाता है। तो पर्याप्त और अपर्याप्त ये दोनों कहना। पर्याप्ति अभी दोनों की अपेक्षा से बताना, छ पर्याप्ति और छ अपर्याप्तियाँ, प्राण 10 और 7, संज्ञा 4, गति हाँ देखो अभी तक पांचवे तक तो हमने दो गति देखी, तिर्यंच और मनुष्य। अभी छठे गुणस्थान से आगे सभी गुणस्थानों में एकमात्र मनुष्य गति कहेंगे। इंद्रिया, हाँ एक पंचेंद्रिय, काय त्रस काय, योग मन के चार, वचन के चार, औदारिक काय योग, नौ हो गए, और आहार द्विक नहीं हो गए, हाँ क्योंकि हमने अपर्याप्त आलाप लिया ना, तो औदारिक मिश्र वाला तो नहीं होगा, क्योंकि छठे गुणस्थान वर्ती है, औदारिक मिश्र कारमान वो तो नहीं होगा, परंतु आहारक के दोनों ही हो गया, आहारक भी होगा और आहारक मिश्र भी होगा। तो इस तरह से ये हमने नौ देखे थे। वेद कौन से हो गए? तीनों वेद, और कषाय चारों, ज्ञान हाँ सबकी अपेक्षा लेने हमको, तो चार ज्ञान, कौन से चार? મતિ શ્રુત અવધિ ઓર મન પરિજ્ઞાન, બરાબર. સંયમ સામાયિક છદોપસ્થાપના, બસ દોહીએ પરિહાર વિશુદ્ધિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન હે ને, સામાન્ય હમ ચર્ચા કરે તો પરિહાર વિશુદ્ધિ કો ભી લેના. એને તીન સંયમ દર્શન તીન હૈ, લેશા દ્રવ્ય સે છો ઓર ભાવ સે તીન શુભ, બરાબર હૈ. ભવ્ય કે અભવ્ય, ભવ્ય. સમ્યક તો કોણ કોણ સે હો ગયે, ક્ષૌપશમિક ઓર ક્ષાયિક. ઔપશમિક કો નહીં હો જી, દેખો કોઈ પ્રથમ ઉપશમ સમ્યક તો પ્રાપ્ત કરતા હૈ, સાતવે મેં ચલા જતા હૈ, ઓર સાતવા છઠ્ઠા સાતવા છઠ્ઠા સાતવા છઠ્ઠા ચલતા હૈ, તો ઉસકે ઉપશમ સમ્યક તો કે કાલ મેં કિતને હી બાર છઠ્ઠા સાતવા હોતા હૈ. સબ લોગોં કો લેના હમ યે છઠ્ઠા ઇને અકેલા આહારક વાલા નહીં લેના હૈ, ખ્યાલ હૈ. હા તીનો તો સંગી સંગી હૈ, આહારક કે અનાહારક આહાર રખીએ. દેખો યહાં અપર્યાપ્ત અવસ્થા તો કહે રહે હૈ, પરંતુ યહાં અપર્યાપ્ત કૌન સી હૈ, મિશ્ર વાલી હૈ, આહાર મિશ્ર વાલી અપર્યાપ્ત હૈ. કારમાણ કા યોગ હોતા બીચ મેં તો હમ કહીને કહેતે અનાહારક ભી હૈ, તો યહાં આહારક હી હૈ ઓર ઉપયોગ દોનો હૈ. દેખો યહાં લિખા તો નહીં હૈ, મગર યે પ્રમત્ત કા અપર્યાપ્ત આલાપ લગાના હૈ. દેવેન્દ્રભાઈ આપકો લગાના હૈ. હા ગડબડ મત કરો, બહુ ગડબડ કરતે ફર બીજ બીજ મેં ગોટાલા કર દેતે. પ્રમત્ત સંયત કા અપર્યાપ્ત કા આલાપ કહેના. હા ગુણસ્થાન છઠ્ઠા, જીવ સમાસ અભી અપર્યાપ્ત કા આલાપ કહેના બતાયા આપકો, સંગી અપર્યાપ્ત. હા પર્યાપ્તિ કિતની હો ગઈ, પર્યાપ્તિ છ, અપર્યાપ્તિ અપર્યાપ્ત કા આલાપ ચલ રહે છ, અપર્યાપ્તિ. પુસ્તક મેં કુછ દેખના મત, યહાં લિખા નહીં હૈ. હા પ્રાણ સાત પ્રાણ, સંજ્ઞા ચારો, ગતિ એક મનુષ્ય ગતિ, ઇન્દ્રિય કાય ત્રસ કાય, યોગ કિતને હો ગયે, અવધારિક હોગા યહાં મિશ્ર આહારક મિશ્ર. હા ગોટાલ મેં બોલો ને શાંતિ સે ચલો. હા આહારક મિશ્ર ઓર હા બરો, બહુ અચ્છા. કારમાં નહીં યહાં, એકમાત્ર આહારક મિશ્ર હોગા, બહુ અચ્છા. તો એક યોગ હૈ આહારક મિશ્ર વાલા. હા વેદ કિતને હૈ, હા એક પુરુષ વેદ હૈ, સ્ત્રી વેદ વાલે ઓર નપુસક વેદ વાલે કો યે આહારક વાલા નહીં હોગા, આહારક શરીર નહીં હોગા ઉનકે. કષાય જ્ઞાન, દેખો જ્ઞાન તીન હી હૈ, મન પર્યે કો યહાં નહીં લેના હૈ, તીન સુજ્ઞાન. સંયમ સામાયિક છેદોપસ્થાપના, દેખો પરિહાર વિશુદ્ધિ કો નહીં લેના, યહાં ગડબડી મત કરના. ફિર સામાયિક ઓર છેદોપસ્થાપના હમને દેખા થા, ચાર વાતે એક સાથ નહીં હોતી હૈ. કોણ કોણ સી ચાર વાતે, આહારક આહારક યાની કાયોગ જો હૈ, આહારક આહારક મિશ્ર કાયોગ, પરિહાર વિશુદ્ધિ સંયમ, ઔપચમિક સમ્યક તો ઓર મનોપર્ય જ્ઞાન, યે ચાર વાતે એટ અ ટાઈમ નહીં હોગી એક જીવ કો. દર્શન તીન, દેશા દ્રવ્ય કી, દ્રવ્ય કી કોણ સી ઈચ્છા હોગી, અપર્યાપ્ત અવસ્થા ચલ રહે, આહારક મિશ્ર કાયોગ મેં દ્રવ્ય કી કોણ સી હોગી, અપર્યાપ્ત મેં દો હોતી હમેશા, શુક્લ હોગી કપોત ઓર બસ કપોત લેશા હોગી, ઓર ભાવ સે દીન શુભ હોગી, ભવ્ય ઓર સમ્યક તો હા શાયિક ઓર વેદક. અબ યહાં ઉપશમિક સમ્યક તો નહીં હોગા, સંગી આહારક કે અનાહારક, આહારક હી હૈ ક્યોંકિ આહારક મિશ્ર કાયોગ હૈ ઓર ઉપયોગ દોનો. देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम, यहाँ तो अपर्याप्त का अलग दिया नहीं है हमने समझने के लिए इसको देखा। देखो प्रमत्त संय जीवों के उघाल आप कहने पर एक एक गुणस्थान लिखा, यहाँ एक प्रमत्त संयत लिखना बीच में, एक प्रमत्त संयत गुणस्थान लिखा पहली लाइन में उसमें। डॉक्टर मिला कि नहीं, देखो एक गुणस्थान लिखा है ना तो बीच में प्रमत्त संयत लिख देना, वो लिखने का उनका रह गया है। तो एक प्रमत्त संयत गुणस्थान, दो जीव समास, कौन से दो? हाँ अभी हमने देखे थे ना संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, छहो पर्याप्तिया छहो अपर्याप्तिया, दस प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, ग्यारह योग, तीनों वेद, चारों कषाय, आदि के चार ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीन संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, तीनों सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। हाँ, अब ये तो प्रमत्त संयत का हो गया। अब अप्रमत्त संयत जीवों के उघाल आप कहने पर पहले हम देखेंगे और फिर पढ़ेंगे। कौन कहना चाहता है बताओ, मंजूताई आप बताना। गुणस्थान अप्रमत्त, कौन सा? सातवा। जीव समास संगी पर्याप्त, बराबर। पर्याप्ति छे, प्राण दस, संज्ञा हाँ कौन से? चार। चार कौन से? गुणस्थान कौन सा चल रहा है? सातवा। सातवा गुणस्थान चल रहा है ना? हाँ, तो सातवें गुणस्थान में संज्ञा कितनी होगी? तीन होगी। हाँ गड़बड़ी मत करना। हाँ कौन सी नहीं होगी? आहार संज्ञा नहीं होगी। तो कौन कौन सी है अब यहाँ? भय, मैथुन और परिग्रह, ये तीन संज्ञाएं हैं। सातवां गुणस्थान है ना। हाँ, देखो आहार बिना तीन संज्ञाएं हैं, गति हाँ एक मनुष्य, इंद्रिय एक पंचेंद्रिय, काय एक त्रस काय, हाँ योग बताना, मन के चार, वचन के चार और एक अवदारिक, बराबर। वेद कितने हो गए? तीनों वेद। सातवां गुणस्थान, देखो नौवे के पहले भाग तक तीनों वेद होते हैं। कषाय, ज्ञान, हाँ मन पर एक वो भी लेना है ना, केवल ज्ञान के बिना चार जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान की बात है यहाँ। संयम, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, छठे सातवें में ये परिहार विशुद्धि भी होगा किसी जीव को। यहाँ तो सभी जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा ये आलाप चल रहे हैं, तो किसी जीव के तो मतिशुद्ध दो ही हो गए, किसी को मतिशुद्ध अवधि हो गए और किसी को मतिशुद्ध अवधि मन पर ये भी हो गए। आपको कोई ऐसे मालूम है मन पर ज्ञान वाले मुनि? हाँ देखो गणधर, चार ज्ञान के धारी कहते ना गणधर, तीर्थंकर के भी जब मुनि अवस्था धारण करते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, तो वहां पर वो हाँ सातवां गुणस्थान प्राप्त करते, उनके चार ज्ञान प्राप्त यानी मन पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो इनका प्रश्न ऐसा है, तीर्थंकर मन पर ज्ञान का इस्तेमाल कब करेंगे? इस्तेमाल नहीं होगा उनके, वो प्रकट है, उनको इस्तेमाल करने का कोई दूसरों के मन में क्यों झांकेंगे? हाँ और उसमें क्या मिलेगा उनको? दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थ के विचार चल रहे हैं वो मन पर ज्ञानी जान सकते हैं, ये उनको ऐसे ज्ञान का क्षोभ ऐसा प्रकट हुआ है। देखो चार ज्ञान, संयम अभी देखा हमने, हाँ हाँ तीन देखे, संयम देखे थे, दर्शन दर्शन तीन, लेशा द्रव्य की छह और भाव की तीन शुभ। देखो सातवें तक तीन शुभ है, कहाँ से कहाँ तक है? हाँ देवेंद्र भाई, पांचवे से सातवें और पहले से मैंने कहां से कहां तक पूछा। देखो पद्म पीत ये लेशा कहां से कहां तक है, पहले से लेकर सातवें तक है। और शुक्ल लेशा कहां से कहां तक है, अकेले आठवें में नहीं है, पहले से लेकर तेरहवें तक है। आठवें गुणस्थान में कोई पूछेंगे कौन सी लेशा है तो हम आप कहना कि अकेली शुक्ल लेशा है, परंतु शुक्ल लेशा कहां पाई जाती है ऐसा पूछेंगे तो पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक होती है। पीत पर्व कहां से कहां तक होती है, पहले से सातवें तक होती है। और तीन अशुभ लेशाएं कहां कहां पाई जाती है तो पहले से चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है। भव्य के अभव्य भव्य सम्यक तो कौन सा है, हाँ तीन औपशमिक शौपशमिक और क्षायिक। संगी के असंगी हाँ आहारक अनहारक और उपयोग दोनों। देखो अभी इसको पढ़ेंगे। अप्रमत्त संयत जीवों के ओघालाप कहने पर एक सातवां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण। देखो यहाँ आहार बहे मैथुन ये तीन संज्ञाएं होती है ऐसा लिखा है, ये गलत है। वो आहार शब्द निकाल देना वहां से, मिला डॉक्टर सेकंड लाइन में वो कहने पर है ना उसके नीचे आहार निकाल देना, वो शब्द काट देना उसको, बहे शब्द को रखना, फिर बीच में और शब्द है उसको भी काटना, फिर मैथुन शब्द तो है ही वहां, और उसके पश्चात अब यहाँ यहाँ जोड़ देना, वहां लिखना और परिग्रह, यानी अब मैं पढ़ती हूँ ऐसा होना चाहिए वहां। भय मैथुन और परिग्रह ये तीन संज्ञाएं होती है, मिला तेजुबेन बराबर करो। आहार शब्द निकाल देना, भय रखना, और शब्द निकाल देना, मैथुन शब्द रखना, उसके पश्चात दो शब्द डालना और परिग्रह, ऐसे दो शब्द। देखो अब मैं पढ़ती हूँ। भय मैथुन और परिग्रह ये तीन संज्ञाएं होती हैं। नीचे टेबल में तो बराबर लिखा है आहार बिना तीन, अभी उसका कारण भी बताते हैं। संस्कृत में देखो ऊपर तिन्नी संज्ञाओं, तीन संज्ञाएं होती है ऐसा लिखा उसमें। अब इसको क्लियर यानी उसको समझाने के लिए वो गलत प्रस्तुत हुआ है या ठीक कर देना इसको। अब उसका कारण बताते हैं, क्योंकि असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा का अभाव जाने हो जाने पर क्या कहते हैं, असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा का अभाव हो जाने से अप्रमत्त संयत के आहार संज्ञा नहीं होती है। हमने पहले भी देखा था कि असाता वेदनी की जब जब ये जो क्या आहार संज्ञा कहलाती है वो आहार यानी क्षुधा तृष्णा आदि लगती है तो क्या होता है, तो असाता वेदनीय कर्म का उदय हो तो कुछ बात नहीं, वहां उदीर्णा यानी तीव्र उदय हो जाता है तब वहां क्षुधा तृष्णा आदि बनती है वहां। तो ये जो उदीर्णा है असाता वेदनी की उदीर्णा वो छठे तक ही हो सकती है, सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों को या ऊपर के किसी भी गुणस्थानों में असाता वेदनीय की उदीर्णा ही नहीं हो सकती। यानी सातवें में आठवें में या ऊपर के किसी भी गुणस्थान में आहार संज्ञा हो ही नहीं सकती है। हाँ आहार संज्ञा हो नहीं सकती, इसलिए क्या कहते हैं अब वहां आहार नहीं होगा। तो केवली भगवान में आहार हो सकता है, सातवें वाले को भी नहीं होगा। अरे सातवें में नहीं होगा तो केवल ज्ञानी होने के बाद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखो वहां वो कर्म नौ कर्म का ग्रहण होता है, नौ कर्म आहार जिसको कहते हैं, आहारक कहेंगे पर कौन सा आहारक, वो नौ कर्म का जो ग्रहण है शरीर के परमाणुओं का ग्रहण निरंतर चलता है उनका, तो उसकी अपेक्षा से उनको आहारक कहा है। परंतु जो कवलाहार है जो हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं ऐसा आहार केवलियों को नहीं होता, सातवें गुणस्थान के ऊपर तो कहीं भी नहीं होता। तो ये आहार की इच्छा उत्पन्न होना ये जो असाता वेदनीय के उदीर्णा में कार्य होता है, ऐसी उदीर्णा छठे में ही यानी छठे तक ही पाई जाती है, छठे के ऊपर पाई ही नहीं जाती। देखो किंतु भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय संभव है। यानी भय संज्ञा का कारणभूत कौन सा कर्म है, हमने देखा था भय कर्म, वो तो आठवें गुणस्थान के अंत तक उसका उदय है। आदि संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में वेद कर्म जो है, मोहनीय का जो वेद नाम का कर्म है, नौ कषाय है ना, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, उसका उदय नौवे के पहले भाग तक है, तो वहां तक मैथुन संज्ञा होगी। और लोभ का उदय दसवें के अंत तक है, तो वहां तक तो परिग्रह संज्ञा होगी। इसलिए क्या कहते हैं, भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय संभव है, इसलिए उपचार से भय मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं हैं, वो भी उपचार से हो कर्मों का उदय देखकर वहां बताया गया है। परंतु वहां कोई से भय है इसलिए डर से भाग गए हैं सातवें में से उठकर, या वहां कोई मैथुन के परिणाम है या परिग्रह के परिणाम है, ऐसी बिल्कुल बातें है ही नहीं है। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, फिर भी कर्मों का उदय ऐसा पाया जाता है, इसलिए उनको उपचार से ये संज्ञाएं कहने में आती हैं। आगे पढ़ते देखो, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक का योग, ये नौ योग, तीनों वेद, चारों कषायें, केवल ज्ञान के बिना चार ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीन संयम, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशा और भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औषमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीव देखना है हमको, आठवां गुणस्थान। हाँ, कौन कहेगा, अश्विन भाई आप कहना। हाँ, एक अपूर्व करण गुणस्थान, जीव समास संज्ञा पर्याप्त, पर्याप्ति छः, प्राण दस, संज्ञा हाँ तीन, अभी भय संज्ञा है यहाँ पर, हाँ तीन संज्ञा, गति मनुष्य गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय हतरस काय, योग नौ बराबर, वेद तीनों, कषाय चार, ज्ञान हाँ चारों ज्ञान है, संयम अब आठवां गुणस्थान है, हाँ सामायिक छेदोपस्थापना दो ही लेना, परिहार विशुद्धि नहीं होती यहाँ, दर्शन तीन दर्शन, लेशा द्रव्य की छह और भाव की तीन है, कितनी है, नहीं एक है अभी, देखो श्रेणी का आरंभ हुआ है, अभी एक ही भाव लेशा शुभ शुक्ल लेशा है, भव्य सम्यक्त्व हाँ औपशमिक और क्षायिक दो ही सम्यक्त्व हो गए, अभी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, संगी आहारक और उपयोग दोनों, तो इसको पढ़ेंगे हम। अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों के उघालाप कहने पर एक आठवां गुणस्थान, डॉक्टर पहले पान पर 437 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, नीचे के तीन चार लाइन, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष तीन संज्ञाएं, यानी भय मैथुन और परिग्रह, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चार मनोयोग, चार वचन योग और एक औदारिक का योग, ये औदारिक के बाद कॉमा निकाल देना, ये नौ योग होते हैं। शंका, ध्यान में लीन अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों के वचन बल का सद्भाव भले ही रहा आवे, क्योंकि भाषा पर्याप्ति नामक पौद्गलिक स्कंधों से उत्पन्न हुई शक्ति उनके पाई जाती है, किंतु उनके वचन योग या काय योग का सद्भाव नहीं मानना चाहिए। क्या कहते हैं, वचन बल भरे हो परंतु वहां वचन का और काय का कोई कार्य नहीं है, तो यह उनका योग नहीं हो सकता है, आत्मा की उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा शंकाकर का शंका है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि ध्यान अवस्था में भी अंतर जल्प के लिए प्रयत्न रूप वचन योग और कायगत सूक्ष्म प्रयत्न रूप काय योग, इनका सत्व अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया ही जाता है, इसलिए वहां वचन योग और काय योग भी संभव है। आत्मा की जो प्रवृत्ति है, प्रदेशों की जो चंचलता है, वो तो वहां पाई ही जाती है। अंतर जल्प है, अंदर ही अंदर जो भाषात्मक विचार भी चलते हैं ना हमको, तो ये सब अंतर जल्प है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ शुद्ध हूँ, ये जो विचार चलते हैं तो ये भाषात्मक है, अंतर जल्प कहते हैं, और हम जो बोलते हैं वो बहिर्जल्प है। अब आगे, तीन वेद, चारों कषायें, केवल ज्ञान के बिना शेष चार ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम, अभी परिहार विशुद्धि को नहीं लिया, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से केवल शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक्त्व, वे कॉमा निकाल देना औपशमिक के बाद, सौनिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब हम शेष कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो।